नमस्कार भारत, 27 अगस्त सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोलीबारी की घटना में हमलावर समेत 3 की मौत, कई जख्मी।
I seen somebody's body on the ground. I seen kid with blood all over his clothes. People with blood on their shoes.
जानेंगे अखिलेश यादव और आजम खान पर तीखा हमला बोलने के बहाने कहीं बीजेपी के करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रहे अमर सिंह। और केरल की बाढ़ को देवी देवताओं की सजा बताने वालों पर सुनेंगे पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की टिप्पणी।
मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं कि आज वो देश जहां एक तरफ चंद्रयान सैटेलाइट आसमानों की खबर ला रहा है, मगर इन्हीं आसमानों में रहने वाले देवी देवता केरल के लोगों को बीफ खाने और मंदिर में महिलाओं को दाखिले की इजाजत देने की सजा दे रहे हैं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में हुई गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना जैक्सनविल शहर की है, जहां जैक्सनविल लैंडिंग नाम के शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और डाइनिंग कॉम्प्लेक्स में मास शूटिंग हुई। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इस घटना में 2 लोग मारे गए हैं और 11 जख्मी हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जैक्सनविल के यूएफ हेल्थ हॉस्पिटल में 6 लोग लाए गए हैं। इनमें से 5 की हालत स्थिर है, जबकि 1 की स्थिति गंभीर है। ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने अपनी 2 दिन की आयरलैंड की यात्रा खत्म की और चर्च के लोगों के लिए माफी मांगी जो बच्चों के यौन शोषण पर चुप रहे। इससे पहले उन्होंने कहा कि वो यौन शोषण के शिकार पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन डबलिन में उनके भाषण के दौरान थोड़ी ही दूर हजारों लोग पोप और चर्च के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हाल ही में अमेरिका में पेनिसिल्वेनिया के सुप्रीम कोर्ट ने कैथोलिक चर्चों में यौन शोषण से जुड़ी ग्रैंड जूरी की रिपोर्ट को जारी किया था, जिसमें 300 से ज्यादा पादरियों के नाम हैं। जूरी ने अपनी जांच में पाया था कि बीते 70 साल के दौरान राज्य के 6 केंद्रों के पादरियों ने 1000 से ज्यादा बच्चों का शोषण किया। एक प्रदर्शनकारी रोनन मूर ने कहा,
We want to see a complete separation of church and state. We apparently have it in our constitution, but it's not really there.
हम चर्च और सरकार को एकदम अलग देखना चाहते हैं। संविधान में तो यही लिखा गया है, लेकिन ये असल में दिखाई नहीं देता, बल्कि हमारे नेता चर्च की मानते हैं जैसा चर्च उन्हें करने को कहता है, और हम अपने बच्चों, शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों को भी चर्च के हिसाब से चलने देते हैं, जिन्हें साइंस के हिसाब से चलना चाहिए था। हम चाहते हैं कि चर्च हमें अकेला छोड़ दे। अगर हम इसके सदस्य नहीं बनना चाहते हैं तो हमारे समाज को अपने हिसाब से चलाना छोड़ दे। प्रदर्शनकारी रोनन मूर के शब्द। कोलंबिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ रेफरेंडम लाया गया, लेकिन इसके मान्य होने के लिए जरूरी न्यूनतम वोट भी नहीं मिल सके। लगभग 1,20,00,000 लोगों ने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, लेकिन रेफरेंडम के वैध होने के लिए इससे ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी की जरूरत थी। इस रेफरेंडम में ज्यादा वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्तावित कदमों को मिले, जिसमें सांसदों को वेतन कम करने और भ्रष्टाचार के जुर्म में सिर्फ नजरबंदी की सजा को हटाना शामिल था। कोलंबिया की कंट्रोलर जनरल के मुताबिक भ्रष्टाचार की वजह से कोलंबिया को हर साल $15 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। श्रीलंका में एक बड़ी सामूहिक कब्र का पता चला है, जहां 90 लोगों के कंकाल मिले हैं। मन्नार शहर में मिली ये कब्र 2009 के गृह युद्ध के बाद मिली दूसरी सबसे बड़ी सामूहिक कब्र है। ये इलाका एक वार जोन था। कुछ दिन पहले श्रमिकों को यहाँ कुछ मानव अवशेष मिले थे, लेकिन जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरी साइट को खोदने के आदेश जारी किए। ये तो अभी तक नहीं पता चला है कि ये कंकाल पीड़ितों के हैं या मारने वालों के, लेकिन जिस तरह से इन शवों को दफनाया गया है उससे सवाल तो पैदा होते हैं। श्रीलंका के गृह युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और हजारों लोग लापता हो गए थे। पूर्व अमरीकी सीनेटर जॉन मैकिन की अमरीका में राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। शनिवार को उनका ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। उनके पार्थिव देह को इसी हफ्ते अमरीकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाएगा, ताकि वे उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। वॉशिंगटन के नेशनल कैथेड्रल में उनके लिए मेमोरियल सर्विस का भी आयोजन होगा। इसके बाद उन्हें एनापोलिस में अमरीकी नेवल अकेडमी में दफनाया जाएगा। जॉन मैकिन एरिजोन से सीनेटर रहे हैं, वहां पर विशेष तौर पर उनके लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। देश में जारी आर्थिक संकट के बीच ईरान की संसद ने वित्त मंत्री मसूद करबासिया को पद से हटा दिया है। मसूद के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। अमेरिका से एक बार फिर गोलीबारी की खबर आई है। फ्लोरिडा राज्य में फायरिंग की घटना में अब से कुछ देर पहले तक कई लोगों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इसमें दो लोगों की मौत हुई है। ये घटना जैक्सनविल शहर की है, जहां पर एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में किसी ने लोगों पर गोलियां चला दी। माना जा रहा है कि इस घटना में संदिग्ध हमलावर की भी मौत हो गई है। और क्या जानकारी है इस घटना को लेकर, सुनिए हमारी सहयोगी सरप्रिया सांगवान से।
रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य का जैक्सनविल शहर गोलियों की आवाज से दहल गया। यहां पर जैक्सनविल लैंडिंग नाम के एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में वीडियो गेम खेल रहे लोगों पर एक संदिग्ध ने गोलियां चला दी। उस वक्त के हालात को एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस तरह से बयां किया। लोग चिल्ला रहे थे कि फायरिंग हो रही है, मैंने भी गोलियां चलने की आवाज़ सुनी। लोग भाग रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, वो वहां से बाहर निकलना चाहते थे। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। जिस समय फायरिंग हुई उस समय एक गेमिंग टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें लोग फुटबॉल गेम मेडन खेल रहे थे। लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक एक गेमर ने हारने के बाद गोलियां चलाई और फिर खुद को भी मार डाला। इस रिपोर्ट में एक अन्य गेमर के बयान के हवाले से यह बात लिखी गई है, मगर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। जैक्सनविल लैंडिंग में काम करने वाली एक महिला ने बताया कि उन्होंने क्या देखा और सुना।
I heard the multiple shootings and the security came and got me and they told me to hide. I was hiding for a little while.
मैंने कई गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, सिक्योरिटी वाले आए और मुझे छिपने को कहा। बाद में उन्होंने मुझे बाहर निकाला। मैंने किसी को जमीन पर गिरे देखा, एक बच्चे को खून से सने कपड़ों में भी देखा, लोगों के जूतों पर खून लगा हुआ था। मैंने इस तरह के मंजर की कल्पना भी नहीं की थी, मेरा तो दिल ही बैठ गया। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। शहर के प्रशासन का कहना है कि इस हमले को अंजाम देने वाले संदिग्ध की भी मौत हो गई है। जैक्सनविल के शेरिफ माइक विलियम्स ने पत्रकारों से कहा,
We have no outstanding suspects at this time. No outstanding suspects. We have one suspect in this case.
अभी किसी संदिग्ध की तलाश नहीं की जा रही। एक ही संदिग्ध है और वह मर चुका है। वह एक गोरा पुरुष है और उसकी पहचान करना बाकी है। घटनास्थल पर कुछ लोगों की मौत भी हुई है और कुछ घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। ये थे स्थानीय शेरिफ माइक विलियम्स के शब्द। पुलिस का कहना है कि संदिग्ध हमलावर समेत तीन लोगों की मौत हुई है, मगर स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इस घटना में चार लोगों की मौत हुई है और 11 जख्मी हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जैक्सनविल के यूएफ हेल्थ हॉस्पिटल में 6 लोग लाए गए हैं। इनमें से 5 की हालत स्थिर है, जबकि 1 की स्थिति गंभीर है। शेरिफ के दफ्तर की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि घटना की जाँच की जा रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया सरप्रिया। और अभी अभी जानकारी आई है कि जो संदिग्ध है उसकी पहचान हो चुकी है। उम्र है 24 साल, बाल्टीमोर के रहने वाले थे और डेविड काट्स नाम उनका था, और फ्लोरिडा में इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अब रुख करते हैं भारत का। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता आजम खान पर काफी तीखा हमला बोला है। एक बयान में उन्होंने समाजवादी पार्टी को जहां नमाजवादी पार्टी बताया, वहीं आजम खान पर उन्होंने कई व्यक्तिगत हमले किए। समाजवादी पार्टी इसे उनकी हताशा बता रही है, तो दूसरी ओर राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे अमर सिंह की बीजेपी की ओर करीब जाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद से ही अमर सिंह कभी मुलायम सिंह यादव, कभी अखिलेश, कभी अमिताभ बच्चन, तो कभी अन्य नेताओं के खिलाफ टीवी चैनलों पर या फिर इंटरव्यूज में अक्सर आग उगलते रहते हैं। इस बार उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है और उसमें अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और आजम खान पर खास तौर पर तीखा हमला बोला है। करीब 4.5 मिनट के इस वीडियो संदेश में उन्होंने इन दोनों पर काफी संगीन आरोप लगाए हैं। आजम खान पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बड़ी होती बेटियों को मारने और उन पर तेजाब फेंकने की बात करते हैं। हालांकि आजम खान इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह की सच्चाई के होने से साफ इनकार करते हैं।
ये शब्द न मेरे हैं, ना हो सकते हैं कि सिर्फ हल्की शोहरत पाने के लिए, मुझसे वाद विवाद करने के लिए, सत्ता दल से उसका फायदा उठाने के लिए कम से कम इस ओछे स्तर पर न उतरा जाए।
वहीं समाजवादी पार्टी अमर सिंह के इस बयान को कोई खास तवज्जो देना नहीं चाहती। पार्टी प्रवक्ता उदयवीर कहते हैं,
अमर सिंह का कोई न तो राजनीतिक भविष्य है न तो वर्तमान में उनको कोई पूछ रहा है, तो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए किसी को चर्चा में आ सके, उनके बयानों को न तो अखिलेश जी गंभीरता से लेते हैं, न तो नेता जी गंभीरता से लेते हैं, न तो किसी अन्य पार्टी का ही नेता कोई उनके बयानों को गंभीरता से लेता है।
दरअसल अमर सिंह जब से समाजवादी पार्टी से निकाले गए हैं तब से वो लगातार बीजेपी और खासकर मोदी अमित शाह की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जब सीधे तौर पर उनका नाम लिया तो कयास लग रहे थे कि अमर सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। जानकारों के मुताबिक अमर सिंह की हर संभव कोशिश है कि वो कैसे बीजेपी की मुख्यधारा की राजनीति में आ जाएं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस और JDS के बीच तनाव पैदा होने की खबरों को मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार मजबूत है। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। सिद्धरमैया के इस बयान को गठबंधन पर खतरे की तरह देखा जा रहा था, जिसके बाद कुमारस्वामी को सफाई देनी पड़ी। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कर्नाटका में जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों पार्टियों को ये सफाई देना पड़ रहा है कि सरकार मजबूत है। जैसे कि मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी को कहना पड़ा कि उनकी सरकार मजबूत है और कोई भी उनकी सरकार को गिरा नहीं सकता है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा।
आ दृष्टिया इवत्तु नन्न भावनेयन्न ई वेदिके मुखांतर माध्यम एल्ला मित्र इरोदरिंद
हम मीडिया को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी सरकार गिरने वाली नहीं है। हमें पता है इस सरकार की शक्ति कहाँ से आती है। आपको बहुत सारी खबरें मिल रही होंगी कि यहाँ 10 लोगों की बैठक हुई है या 17 लोगों की बैठक हुई है और कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार हो गए हैं, और जो कुछ होने वाला है वो 3 सितंबर को हो जाएगा। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि ये सरकार मजबूत है। ये थे HD कुमारस्वामी के शब्द। कुमारस्वामी ने इसी मौके पर अधिकारियों को भी चेतावनी दी कि वो इस तरह के खबरों के प्रभाव में आकर अपना काम करने में ढिलाई ना दिखाएं। कुमारस्वामी का बयान तब आया जब अखबारों में ये खबर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने बयान दिया है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरे दिन जब पत्रकारों ने उनसे इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा,
मत्ते नम पक्ष ने अधिकारक बरतदे मुंदन चुनावणेयल्लि गेद्दु बर्तीवि नावे नीवु हेळिद केलस।
हाँ, आपको उससे जो भी मैंने निकालना है वो निकाल लीजिए। हमने इतना ही कहा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार में आएगी और लोगों की मांग पूरी करेगी, और हाँ, इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तब हमारी पार्टी सरकार में आएगी। आप क्या समझते हैं कि आम जनता कुछ सवाल पूछती है और हम उनको ये कहें कि हमारी पार्टी वापस सत्ता में नहीं आएगी? हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन सरकार पूरे 5 साल की अवधि खत्म करेगी। ये थे सिद्धरामैया के शब्द। सिद्धरामैया इस तरह के स्पष्टीकरण गठबंधन सरकार के बारे में ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की अवधि के संबंध में भी देते आए हैं। उनके ताज़े बयान पर हुआ विवाद ये भी बताता है कि किस तरह मीडिया भी उनके बयानों में रुचि ले रहा है। जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे और HD कुमारस्वामी विपक्ष में थे तब दोनों के बीच आलोचना के तीर खूब चला करते थे। इस वक्त JDS के पास कांग्रेस के मुकाबले आधी सीटें भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद JDS को दिया हुआ है। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी साल फरवरी में एक सर्कुलर जारी करके ये स्पष्ट किया था कि अगर कॉरपोरेट घराने कर्ज को चुकाने में 1 दिन की भी देर करते हैं तो उसे डिफॉल्टर मानकर उनकी कर्ज ली गई रकम को NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मान लिया जाएगा। तकनीकी रूप से इसे 1 डे डिफॉल्ट नॉर्म कहा गया और इस 1 मार्च से लागू भी कर दिया गया। सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे सभी पिछले मामलों को सुलझाने के लिए 1 मार्च 2018 से 180 दिनों का वक्त दिया गया था। इस दौरान जो मामले नहीं सुलझते हैं उन सभी खातों को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया में शामिल होने पर मजबूर किया जा सकेगा। 180 दिनों की मियाद आज यानी 27 अगस्त को समाप्त हो रही है। इसकी क्या अहमियत है और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, यही पूछा बीबीसी संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव ने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता से।
इसका मतलब क्या है? एनसीएलटी साथ साथ ये बैंक को कहेंगे इस समस्या का समाधान करो, और इस कंपनी का जो जितने सारे संपत्ति होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, ये कंपनी का जो प्रमोटर है, इनके नियंत्रण के बाहर चला जाता है। और एक तरह से ये एक अदालत की तरह है, एनसीएलटी क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी है। ये एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जिसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए एक प्रोफेशनल, और ये इनका काम होगा कि अभी बताना कि कौन किसका नुकसान होगा। तो बैंक नहीं चाहते हैं कि ये सारे जो एनपीए का जो खाता है जो कंपनी के पास एनसीएलटी के पास जाए, क्योंकि बैंक का भी नुकसान होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है जिसमें बैंक को नुकसान लेना पड़ा। तो अभी एक ICRA है, इंडियन क्रेडिट रिसर्च एजेंसी है, इन्होंने अनुमान किया 2000 करोड़ से ज्यादा जो एनपीए है, यानी कि कंपनी बैंकों से 2000 करोड़ से भी ज्यादा लिया पैसा, मगर पैसा अभी तक वापस नहीं दिया, और बाकी है 60 या 70 के आसपास ऐसा कंपनी है इनका जो कर्ज है जो अभी वापस नहीं दिया, 3,00,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ये एक ही बार इसका सेटलमेंट होना होगा, और ये एक तरह से बैंक के लिए भी नुकसान होगा। बहुत सारे कंपनी है और इसमें कुछ काफी जाने माने कंपनी भी है। तो अभी समय बताएंगे कि सोमवार का दिन क्या होगा। सोमवार का दिन बहुत सारे बैंक के जो निर्देशक है, डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो मीट कर रहे हैं, और हमें अनुमान है कि अगर एक दिन भी लेट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक कहेंगे कि भाई तुरंत ये बैंक खाता ये कंपनी को सीधा NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का पास ले जाओ। 3,00,000 करोड़ से ज्यादा जो कर्ज है जो बाकी है, ये 60 या 70 के बड़े बड़े कंपनी, इसमें लगभग 70-75% बिजली उत्पादन का कंपनी है, और इन्होंने ये भारतीय रिजर्व बैंक का जो सर्कुलर है इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, और अभी भी वहां पे ये पेंडिंग है मैटर, और ये मैटर सब जूडिस है। तो इस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक कुछ सख्त कार्रवाई लेगा कि नहीं, ये समय बताएंगे।
आप सुन रहे थे वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता को, और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। सर्वप्रिया, क्या कहते हैं अखबार?
आदर्श, आज के अखबारों के पहले पन्ने को देखते हुए मुझे लगता है कि श्रोताओं को जम्मू कश्मीर पर अपडेट दे दिया जाए, क्योंकि अलग अलग अखबारों में कश्मीर पर खबरें छपी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर के लिए तय किए गए डेवलपमेंट पैकेज के 28 बड़े प्रोजेक्ट 3 साल बाद भी अधर में लटके हुए हैं, जिसमें IIM और एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण बाकी है, सड़कें बनना बाकी है, और लद्दाख में जोजिला टनल का निर्माण भी बाकी है, और यह हर एक प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा का है। क्यों लटके हैं? इसके कई कारण हैं, कुछ में सेंटर से फंड रिलीज ना किया जाना भी एक कारण है। वहीं जनसत्ता अखबार की रिपोर्ट है कि 2010 के बाद इस साल सबसे ज्यादा कश्मीरी युवा चरमपंथी समूहों में शामिल हुए हैं, यह आंकड़ा 2014 से ही बढ़ रहा है। और इसके अलावा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में रविवार को चली मुठभेड़ के बाद 4 चरमपंथियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया। अलबदर संगठन के इन चरमपंथियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी मिले हैं, और 3 चरमपंथी भाग भी निकले हैं। और इसके अलावा एक खबर है कि गृह मंत्रालय ने पूछा है कि क्या ऑनलाइन FIR की घर से, मतलब क्या आप घर से ऑनलाइन FIR कर सकते हैं? तो गृह मंत्रालय ने विधि आयोग से पूछा है कि क्या लोग अपने घर से ऑनलाइन FIR या EFIR दर्ज कराने की उन्हें छूट दी जा सकती है। हालांकि दुर्घटना और मामूली अपराधों में ऑनलाइन FIR हम करा सकते हैं, पहले से इसकी व्यवस्था है
जी।
तो गृह मंत्रालय ने विधि आयोग को बताया है कि पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में ऑनलाइन FIR दर्ज करने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी, और इसके लिए CRPC की धारा 154 में संशोधन करने के सुझाव मिले थे, और यह निर्णय लिया गया है कि विधि आयोग आपराधिक कानून की समीक्षा में ऑनलाइन FIR के सुझाव पर विचार करे। और इसके अलावा एक और जो खबर है वो कि जो मन की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं उसमें उन्होंने उस बात को फिर से छेड़ा है कि एक ही चुनाव हो, एक ही जो विधानसभा चुनाव और केंद्र चुनाव एक साथ किए जाए, और वो देश के लिए अच्छा होगा अगर ऐसा होता है।
ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपी।
जी हाँ, ये हिंदुस्तान, वैसे सभी अखबारों में ये बात छपी है। और लेकिन ये बात तब आई है कि जब प्रकाश रावत, जो ओम प्रकाश रावत हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में इस बात के बारे में मना किया था कि ऐसा होना भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके लिए पूरा लीगल फ्रेमवर्क लगेगा उससे पहले, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने इसके संकेत दिए हैं कि ऐसा किया जाना बेहतर है, और साथ में ये अटल जी, उन्होंने अटल जी का नाम लेकर कहा कि उन्हीं की जो लेगेसी है, जो वही ऐसा चाहते थे, इसको आगे बढ़ाने की ही ये बात है।
जी
जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सरप्रिया।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब पाकिस्तान से वसीतुल्लाह खान की डायरी।
अक्टूबर 2005 में उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर के दोनों भागों में जबरदस्त भूकंप आया। 90,000 से अधिक लोग, लाखों घर, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें और पुल खत्म हो गए। मौत के सन्नाटे ने लाशों की बू का कंबल ओढ़ लिया। किसी के लिए किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। जो जिंदा थे वो सकते में थे, जो घायल थे उन्हें घाव गिनने से ही फुर्सत न थी। जो रजाकार और एनजीओस पाकिस्तान और दुनिया के कोने कोने से मदद करने पहुँचे, उन्हें ना दिन नज़र आता था, ना रात टिपाई देती थी, ना तारीख याद थी। उन्हें तो ये भी याद ना रहता था कि सुबह नाश्ता किया भी था कि नहीं। मगर भूकंप के 3-4 दिन बाद कुछ और लोग भी इन बर्बाद इलाकों में वैगनों में बैठ के आने लगे। सफ़ेद कपड़े, पगड़ियाँ भी अलग अलग रंगों की, किसी की स्याह दाढ़ी तो किसी की सफ़ेद तो किसी की खशखशी। वो किसी की मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी अपनी गाड़ियों की छतों पे बैठे लाउड स्पीकर पे तकरीर कर रहे थे। ये भूकंप नहीं, अल्लाह का अजाब है। ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। हमारी औरतें बेपर्दा हैं, हमारे मर्द क्लीन शेव हैं, हम जुए, शराब और नाजायज संभोग में गर्क हैं, हमारे हाकिम बेईमान, घूसखोर, अय्याश हैं, हम यहूदियों के दोस्त हैं और इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, हम खुले आम नाचते हैं, माओं बहनों को छेड़ते हैं, हम खुदा का हुक्म हंसी ठट्टे में उड़ा देते हैं, इसलिए हम पे मुसीबतें तो ही हैं। ये भूकंप तो शुरुआत है। डरो उस वक्त से जब तुम्हारे गुनाहों की सजा के बदले सामने के दोनों पहाड़ों को टकरा के तुम्हें सुरमा कर दिया जाएगा, जब दरिया किनारे तोड़ के तुम्हें बहा के ले जाएंगे। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, हो सकता है आने वाले अजाब टल जाएं। फिर ये वैगनें आगे बढ़ जातीं, किसी और तबाह होने वाले इलाके में जाके खड़ी हो जातीं, जहां लोग अपने अपने प्यारों की लाशें मलबे में ढूंढ रहे होते और उनके कानों में अपने ही गुनाहों की गिनती उंडेली जा रही होती। जब यूरोप में प्लेग फैला तो पादरी लाशों को दफनाने की बजाय यही कह रहा था कि इसका कारण गंदगी नहीं बल्कि ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। जब हिंदुस्तान में 20वीं सदी के दूसरे दशक में लाखों लोग इन्फ्लुएंजा से मर रहे थे, तब भी कसूर लोगों का था कि जिनसे भगवान नाराज़ हो गया था। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं कि आज वो देश जहां एक तरफ चंद्रयान सैटेलाइट आसमानों की खबर ला रहा है, मगर इन्हीं आसमानों में रहने वाले देवी देवता केरल के लोगों को बीफ खाने और मंदिर में महिलाओं को दाखिले की इजाज़त देने की सज़ा दे रहे हैं। मेरा नज़रिया आपके नज़रिए से भले अलग सही, मैं और आप भले एक दूसरे के खून के प्यासे सही, पर मौलवी, पंडित, पादरी, रबाई, भाई भाई, इन सबको एक ही नज़रिए की डोर ने एक दूसरे से बांध रखा है। हंसना हराम है, रोना हलाल है। लोगों को डराओ और बस डराओ, ना डरें तो अपने अपने खुदा को बीच में ले आओ।
पाकिस्तान से वसीतुल्लाह खान की डायरी सुन रहे थे आप। आपको ये कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। और अब समय है साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में जारी 18वें एशियाई खेलों के 8वें दिन कल शाम होते होते भारत की दुती चांद ने पर्राटा लगाते हुए महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर भारतीय खेमे में खुशी का अनोखा संचार किया। दुती चांद के अलावा एथलेटिक्स में ही कल हिमा दास ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ और मोहम्मद अनस ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। घुड़सवारी में भी टीम स्पर्धा में भारत के फवाद मिर्जा, राकेश कुमार, आशीष मलिक और जितेंद्र सिंह की चौकड़ी ने रजत और फवाद मिर्जा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत को कल इन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किए गए खेल ब्रिज में भी 2 कांस्य पदक मिले। ये कारनामा पुरुष टीम और मिश्रित टीम ने किया। बैडमिंटन में भी भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल महिला एकल में सेमीफाइनल में पहुंच गई। एथलेटिक्स में भारत की जोना मुर्मू और अनुराघवन 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। कल ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी अपना दमखम दिखाते हुए दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। मुक्केबाजी में 51 किलो भार वर्ग में महिलाओं के मुकाबलों में सरजू बाला देवी ने तजाकिस्तान की मदीना घाफोरोवा को एक तरफा 5-0 से ढेर किया। लेकिन कल भारत को तब बड़ा झटका लगा जब 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के गोविंदन लक्ष्मणन को दौड़ के दौरान ट्रैक से बाहर निकलने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कांस्य पदक उनके हाथ से जाता रहा। टेबल टेनिस में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने सटीक निशानों के दम पर कंपाउंड पुरुष और महिला टीम स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका सामना दक्षिण कोरिया से होगा। इन एशियाई खेलों में कल भारत के खाते में 7 स्वर्ण, 10 रजत और 19 कांस्य पदक सहित कुल मिलाकर 36 पदक थे। और अब समीक्षा। क्या तीसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद जारी रहेगा भारत का वार, या फिर इंग्लैंड करेगा पलटवार?
यहाँ पर इंग्लैंड के दौरे में 2 टेस्ट मैचेस में 40 विकेट तो ले ही लिए थे। लॉर्ड्स में एक ऐसा टेस्ट था जहाँ पर सब 20 विकेट नहीं ले पाए थे, तो ये बताता है कि बॉलिंग बहुत सही चल रही है और सपोर्ट अगर बैट्समैन का मिले तो ये अभी भी सीरीज जीतने का मौका बन सकता है।
ये मानना है क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन का। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच इसी सप्ताह 30 तारीख से साउथम्पटन में शुरू होगा। पहले 2 टेस्ट मैच हारने के बाद तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने हुंकार भरी और इंग्लैंड को 203 रन से मात दी। भारत ने अपने तेज गेंदबाजों के दम पर इंग्लैंड को पहली पारी में 161 और दूसरी पारी में 317 रन पर समेटा। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटक कर अपने चयन को सही साबित किया। उनका अनोखा गेंदबाजी एक्शन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए अजीब पहेली साबित हुआ। गेंदबाजों की कामयाबी का मंत्र खुद बताया जसप्रीत बुमराह ने।
कभी कभी आप अच्छी बॉलिंग करते हो तो विकेट भी नहीं आती है, पर इट्स ओके, ऐसा होते रहता है, तो कभी किसी और को विकेट आ जाती है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एज अ बॉलिंग यूनिट सब अच्छी अच्छी बॉलिंग करेंगे, प्रेशर बना के रखेंगे, तो किसी को विकेट मिलेगी और टीम को सक्सेस मिलेगी।
गेंदबाज चले लेकिन उन्हें सहारा मिला बल्लेबाजों का। जब खराब फॉर्म से उभरे अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा और शिखर धवन के साथ साथ केएल राहुल भी, कुछ चिंता मिटी कप्तान विराट कोहली की और उन्होंने माना कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
It was just a question of as batsmen what we can do to provide them with that cushion of you know going hard at the opposition and I'm really happy to see that everyone's taking responsibility at the right time and this couldn't have come at a better time for us.
वैसे विराट कोहली हर बार नई टीम के साथ उतरते हैं और पृथ्वी शॉ और हनुमा विहारी के टीम में आने से बाकी बल्लेबाजों को कड़ा संदेश दिया है। अयाज मेमन कहते हैं,
ये मैं नहीं मानता हूँ कि चौथे टेस्ट में ही बदलाव लाना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि बैटिंग पे दबाव है, बैट्समैन पे दबाव है कि आप परफॉर्म करें, वरना आपकी जगह कोई और ले सकता है।
अब टीम में जिसे भी जगह मिले, मकसद तो यही है कि टीम जीते। और अगर भारत इंग्लैंड का पलटवार झेलकर चौथा टेस्ट मैच भी जीतता है और 2-2 से बराबरी पर आता है तो बने बात भी और जीवित रहे सीरीज भी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिय सांगवान से।
अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में हुई गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना जैक्सनविल शहर की है, जहां जैक्सनविल लैंडिंग नाम के एक एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स में मास शूटिंग हुई। ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस ने अपनी 2 दिन की आयरलैंड की यात्रा खत्म की और चर्च के लोगों के लिए माफी मांगी जो बच्चों के यौन शोषण पर चुप रहे। इससे पहले उन्होंने कहा कि वो यौन शोषण के शिकार पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। कोलंबिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ रेफरेंडम लाया गया, लेकिन इसके मान्य होने के लिए जरूरी न्यूनतम वोट भी नहीं मिल सके। लगभग 1,20,00,000 लोगों ने इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया था, लेकिन रेफरेंडम के वैध होने के लिए इससे ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी की जरूरत थी। श्रीलंका में एक बड़ी सामूहिक कब्र का पता चला है जहां 90 लोगों के कंकाल मिले हैं। मन्नार शहर में मिली ये कब्र 2009 के गृह युद्ध के बाद मिली दूसरी सबसे बड़ी सामूहिक कब्र है। ये इलाका एक वार जोन था। देश में जारी आर्थिक संकट के बीच ईरान की संसद ने वित्त मंत्री मसूद करबासिया को पद से हटा दिया है। मसूद के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जिसमें वो हार का सामना करना पड़ा। बीबीसी समाचार,
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।